पृष्ठ संख्या 133, दशम अध्याय, अनुभववाद, लॉक। जॉन लॉक 1632 से 1704। लॉक का जन्म इंग्लैंड के एक साधारण गृहस्थ परिवार में हुआ। ऑक्सफोर्ड में पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया और वहीं यूनानी भाषा के अध्यापक बन गए। जीवन में राजनीति तथा दर्शन के क्षेत्र में उतरे। लॉर्ड एसले के, जो बाद में अर्ल ऑफ सेफ सबरी हुए, एक भीषण फोड़े को सफलता से चीरकर उनको रोग मुक्त कर देने के कारण लॉक को उन्होंने अपना मित्र और घरेलू डॉक्टर बना लिया। उन्हीं के जीवन के साथ लॉक के राजनीतिक जीवन का भी उत्थान पतन चलता रहा। एसले की मृत्यु के बाद वे हॉलैंड भाग गए और 5 वर्ष बाद सन 1688 की रक्तहीन क्रांति के समय स्वदेश लौट आए। लॉक रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे। राजनीति और दर्शन पर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। वे पुरुषार्थ, पवित्रता, सहनशीलता और विचार स्वातंत्र के बड़े प्रेमी थे। मानवीय बुद्धि पर निबंध, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक रचना है। लॉक में अंग्रेजों की व्यवहार प्रियता और व्यक्ति स्वातंत्र की कूट कूट कर भरे थे। डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज के समान परम तत्व को जानने की इच्छा उन्हें नहीं थी। परम तत्व के विषय में दार्शनिकों में कितना मतभेद है। सत्य के स्वरूप को जानने के पहले अपने ज्ञान के स्वरूप को जान लेना अधिक आवश्यक है। तत्व मीमांसा की अपेक्षा ज्ञान मीमांसा दार्शनिक चिंतन का प्रमुख विषय होना चाहिए। तत्व परीक्षा के पूर्व मानवी ज्ञान की उत्पत्ति, स्वभाव और सीमा का निर्णय कर लेना आवश्यक है। लॉक के निबंध का लक्ष्य ये तीन बातें हैं। पहला, यह जानना कि हमारे ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका मूल स्रोत कहाँ है। दूसरा, यह जानना कि हमारे ज्ञान का स्वरूप क्या है और उसमें कितनी प्रामाणिकता, कितनी निश्चयात्मकता होती है। तीसरा, यह जानना कि हमारे ज्ञान की पहुंच, उसकी सीमा, उसकी क्षमता कहाँ तक है। पृष्ठ संख्या 134। डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज के बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का मूल स्रोत है इंद्रिय अतीत, सहज अनुभूति में। यह अनुभूति निर्विकल्प और स्वतः सिद्ध होती है। इसके मौलिक नियम सहज प्रत्यय या विचार या विज्ञान या इननेट आइडियाज कहलाते हैं। ये हमारे भीतर जन्म से ही विद्यमान हैं। ये बाहर से नहीं आते। ये हमारे ज्ञान के मूल स्रोत और आधार हैं। ज्ञान की प्रामाणिकता और सार्वभौमता इन्हीं पर निर्भर है। ये सहज या इननेट सार्वभौम या यूनिवर्सल और इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष अप्रियोरी है। इन सहज प्रत्ययों के अतिरिक्त डेकार्त ने दो प्रकार के प्रत्यय और माने थे। एक तो वे जिनकी कल्पना हमारी बुद्धि कर लेती है और दूसरे वे जो इंद्रिय अनुभव से बनते हैं। लॉक ने बुद्धिवाद की इस मान्यता का खंडन किया कि ज्ञान का मूल स्रोत इंद्रियातीत सहज अनुभूति है। हमारे कोई सहज प्रत्यय नहीं है। हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है। समस्त ज्ञान की जननी इंद्रिय अनुभूति है। हमारे ज्ञान का आदि और अंत इंद्रिय अनुभव में होता है। इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष ज्ञान वदतो व्याघात है। सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव प्रसूत या अपोस्टेरिओरी है। लॉक ने बुद्धिवाद के विपरीत इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा की। इसके लिए सर्वप्रथम लॉक ने डेकार्त के सहज प्रत्ययों या विज्ञानों का खंडन प्रारंभ किया। हमारा कोई ज्ञान सहज नहीं है। हम किसी प्रकार का ज्ञान जन्म के साथ नहीं लाते। सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव से आता है। जब लोग किसी वस्तु को अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते तो उसे सहज कहकर निश्चिंत हो जाते हैं। यह मार्ग सत्य की खोज से भागने का मार्ग है। यह अंधविश्वास और रूढ़िवाद का मार्ग है। सहज ज्ञान के समर्थकों के अनुसार आत्मा अपने स्वतः सिद्ध प्रत्ययों के साथ ही इस संसार में आती है। तादात्म्य नियम, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, विरोध नियम, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन आदि अनिवार्य और सार्वभौम नियम सहज है। इंद्रिय अनुभव पर निर्भर नहीं। डेकार्त के अनुसार आत्मा और ईश्वर की प्रतीति भी सहज ज्ञान द्वारा होती है। लॉक का आक्षेप है कि यदि सहज प्रत्यय हो तो उनकी प्रतीति बालकों, मूर्खों और पागलों को भी होनी चाहिए और उनके विषय में सभी देशों और सब समयों के मानवों में मतैक्य होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। बालकों, मूर्खों और पागलों को ज्ञान के सार्वभौम नियमों का कोई बोध नहीं होता। बच्चे जानते हैं कि गुड़िया और दूध पीने का गिलास एक ही वस्तु नहीं है, किंतु यह कथन कि बच्चों का यह ज्ञान उनके तादात्म्य नियम और विरोध नियम के ज्ञान के कारण है, हास्यास्पद है। पृष्ठ संख्या 135। कुछ वज्र मूर्ख ऐसे भी हैं जो 10 तक की गिनती भी नहीं जानते। कुछ पागल ऐसे भी हैं जिनको अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं होता। यदि ईश्वर की प्रतीति भी सहज हो तो फिर संसार में नास्तिक नहीं होने चाहिए, किंतु विश्व में नास्तिकों की भी कमी नहीं। और ईश्वर के स्वरूप को लेकर दार्शनिकों में जितना विवाद हुआ है तथा धर्मांध लोगों में जितना रक्तपात हुआ है, वह भी विदित ही है। आचार संबंधी एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सब देशों और सब युगों के लोगों को समान रूप से मान्य रहा हो। आचार संबंधी सिद्धांतों को युक्तियों से सिद्ध करने का अर्थ ही यह है कि ये आंतरिक या सहज नहीं है। यदि बुद्धिवादी यह कहे कि ये विचार बुद्धि में विद्यमान तो रहते हैं किंतु प्रकट रूप में नहीं आते, तो यह असंगत है। बुद्धि में विद्यमान रहने का अर्थ है ज्ञात होना। बुद्धि में कोई विचार रहे और उसका ज्ञान न हो, यह असंभव है। कोई प्रत्यय अचेतन नहीं हो सकता। कोई विचार ऐसा नहीं है जो सहज कहा जा सके। तब ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? लॉक का उत्तर है इंद्रिय अनुभव में। लॉक के अनुसार इंद्रिय अतीत अनुभव असंभव है। अतः अनुभव शब्द का अर्थ इंद्रियानुभव ही समझना चाहिए। यह अनुभव दो प्रकार का है, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा आंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष होता है पंच ज्ञान इंद्रियों के संवेदन या सेंसेशन द्वारा, और आंतर प्रत्यक्ष होता है अंतःकरण या इनर सेंस के संवेदन या रिफ्लेक्शन द्वारा। संवेदन और स्वसंवेदन इन दो द्वारों के द्वारा ही ज्ञान आत्मा में प्रवेश पा सकता है। लॉक के अनुसार आत्मा कोरे कागज, साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। आत्मा रूपी इस कोरे कागज या साफ स्लेट पर अनुभव अपनी संवेदन और स्वसंवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता रहता है। आत्मा रूपी इस अंधेरे कमरे में अनुभव रूपी सूर्य का ज्ञान रूपी प्रकाश संवेदन और स्वसंवेदन रूपी दो खिड़कियों में से होकर आता है और उसे आलोकित करता है। बुद्ध का प्रत्येक विज्ञान अनुभव से प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण ज्ञान अनुभव में ही स्थिर रहता है और इसी में से निकाला जाता है। समस्त ज्ञान का आरंभ और पर्यवसान इंद्रिय अनुभव में होता है। संवेदन और स्वसंवेदन ही ज्ञान के दो द्वार हैं। ये दोनों द्वार एक साथ नहीं खुलते, एक दूसरे के बाद खुलते हैं। इनमें संवेदन प्रथम और प्रधान है, स्वसंवेदन बाद में होता है और संवेदन की अपेक्षा रखता है। पृष्ठ संख्या 136। हमारा ज्ञान प्रत्ययों या विज्ञानों से बनता है। विज्ञान दो प्रकार के हैं, एक तो सरल या सिंपल और दूसरा मिश्र या कॉम्प्लेक्स। सरल विज्ञान संवेदन से या स्वसंवेदन से या दोनों से आते हैं। मिश्र विज्ञान सरल विज्ञानों के योग और मिश्रण से बनाए जाते हैं। आत्मा सरल विज्ञानों को निष्क्रिय होकर ग्रहण करती है। मिश्र विज्ञानों के निर्माण में आत्मा को सक्रिय होना पड़ता है, किंतु आत्मा एक भी विज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकती। आत्मा की सक्रियता विज्ञानों के मिश्रण करने में ही है, उनको उत्पन्न करने में नहीं। सरल विज्ञान मौलिक होते हैं, वे बाह्य प्रत्यक्ष या आंतर प्रत्यक्ष या दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। सरल विज्ञान चार प्रकार के हैं। पहला, जो एक इंद्रिय के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करते हैं, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। दूसरा, जो एक से अधिक इंद्रियों के संवेदन द्वार से आत्मा में प्रवेश करते हैं, जैसे विस्तार, आकार, गति आदि। तीसरा, जो अंतःकरण के स्वसंवेदन द्वार से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, जैसे स्मृति, संदेह, विश्वास, संकल्प आदि। और चौथा, जो बाह्य इंद्रियों के संवेदन और अंतःकरण के स्वसंवेदन इन दोनों द्वारों से आत्मा में आते हैं, जैसे सुख, दुख, सत्ता, शक्ति, एकता, क्रम आदि। इन चार प्रकार के सरल विज्ञानों से ही हमारा सारा ज्ञान बना है, जैसे परिमित अक्षरों से अनंत वाग्म का निर्माण होता है, वैसे ही इन सरल विज्ञानों से समस्त मानव ज्ञान बनता है। मिश्र विज्ञान सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनते हैं। इन विज्ञानों के मिश्रण करने में आत्मा सक्रिय होती है, किंतु इनको उत्पन्न नहीं करती। जिस प्रक्रिया से आत्मा सरल विज्ञानों द्वारा मिश्र विज्ञान बनाती है, उसकी छह अवस्थाएं हैं। पहला, निष्क्रिय रूप से संवेदन या स्वसंवेदन या दोनों के द्वारा सरल विज्ञानों का ग्रहण या परसेप्शन। दूसरा, इन विज्ञानों का धारण या रिटेंशन, क्योंकि विस्मृत होने पर फिर इनकी रचना संभव नहीं। तीसरा, इन विज्ञानों के परस्पर पार्थक्य बोध या डिस्क्रिमिनेंट का उदय। चौथा, इन विज्ञानों का परस्पर संतुलन या कंपेरिजन। पांचवा, इन विज्ञानों का मिश्रण कंपोजिशन। और छठवां, इनका सामान्यकरण और नामकरण या एब्स्ट्रैक्शन एंड नेमिंग। सामान्यकरण और नामकरण की आत्मा की क्रिया है, यह मनुष्य की ही विशेषता है। इसी के कारण पशु में और मनुष्य में भेद है। पशु सामान्य की कल्पना नहीं कर सकता, सामान्य की कल्पना के कारण नामकरण संभव होता है और इसके कारण भाषा का आविष्कार होता है। पृष्ठ संख्या 137। मिश्र विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, पर्याय या प्रकार, मोड्स, द्रव्य, सब्सटेंस और संबंध, रिलेशन। पर्याय वे मिश्र विज्ञान हैं जो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती और जो अपनी सत्ता के लिए द्रव्य पर निर्भर रहते हैं। पर्याय भी दो प्रकार के होते हैं, सरल सिंपल और मिश्र मिक्स्ड। एक प्रकार के सरल विज्ञानों से बने हुए पर्याय सरल हैं और विभिन्न प्रकार के सरल विज्ञानों से बने हुए पर्याय मिश्र हैं। आकार, स्थान, दूरी, निकटता आदि देश के सरल विज्ञानों से बने हुए सरल पर्याय हैं। पल, घंटा, दिन, पक्ष, मास आदि काल के सरल विज्ञानों से बने हुए सरल पर्याय हैं। सौंदर्य है रंग, आकार आदि विभिन्न प्रकार के सरल विज्ञानों से बना हुआ मिश्र पर्याय। द्रव्य के विज्ञान वे मिश्र विज्ञान हैं जो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः हम द्रव्य को नहीं जान सकते, हम केवल उसके गुणों को जानते हैं। गुणों के कारण हम उन गुणों के आधारभूत द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं। प्रत्यक्ष द्रव्य का नहीं होता, प्रत्यक्ष द्रव्य के गुणों का ही होता है। संबंध के विज्ञान वे मिश्र विज्ञान हैं जिनकी सरल विज्ञानों के आधार पर आत्मा स्वयं कल्पना कर लेती है। ये विज्ञान किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन विज्ञानों में कार्य कारण संबंध का विज्ञान मुख्य है। यह हुई लॉक के सरल और मित्र विज्ञानों की चर्चा। अब उनके द्रव्य और गुण संबंधी विचारों की चर्चा भी कर दें। लॉक के अनुसार हमारा ज्ञान विज्ञानों से बनता है, अर्थात विज्ञान ही हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय हैं। विज्ञान होते हैं आत्मा में और उत्पन्न होते हैं अनुभव से। अनुभव का अर्थ है संवेदन और स्वसंवेदन। संवेदन होता है इंद्रियों और बाह्य पदार्थों के सन्निकर्ष से तथा स्वसंवेदन होता है अंतःकरण और मानसिक भावों के सन्निकर्ष से। द्रव्य के पूर्व गुण की विवेचना कर लेना अच्छा होगा। लॉक के अनुसार द्रव्य की वह शक्ति जिसके कारण वह हमारी आत्मा में विज्ञान उत्पन्न करता है गुण कहलाती है। हमारा साक्षात संपर्क द्रव्य से न होकर उसके गुणों से होता है। गुण दो प्रकार के होते हैं, मूल गुण प्राइमरी क्वालिटीज और उपगुण सेकेंडरी क्वालिटीज। मूल गुण वे हैं जो वस्तुतः द्रव्य में पाए जाते हैं और जो हमारी आत्मा में अपने अनुरूप विज्ञान उत्पन्न करते हैं। मूल गुण द्रव्यों के वास्तविक धर्म हैं। जब इंद्रियों का इन मूल गुणों से संपर्क होता है तब ये मूल गुण हमारी आत्मा में संवेदन उत्पन्न करते हैं और उन संवेदनों में अपनी प्रतिकृति या अपना प्रतिबिंब छोड़ जाते हैं। ये प्रतिबिंब ही विज्ञान कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 138। अतः मूल गुणों का काम हमारी आत्मा में संवेदनों के माध्यम से अपने प्रतिबिंब के रूप में विज्ञान उत्पन्न करने का है। इन मूल गुणों के विज्ञान द्रव्यों के वास्तविक धर्मों के प्रतिबिंब हैं। इन मूल गुणों का एक कार्य और है, वह है आत्मा में उपगुणों के संवेदन उत्पन्न करना। उपगुण द्रव्य के वास्तविक धर्म नहीं है, वे द्रव्य में नहीं रहते, वे हमारी आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः उपगुणों को गुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये द्रव्यों के वास्तविक धर्म नहीं हैं। फिर भी इनको व्यवहार के कारण गुणों का भेद मान लिया गया है। उपगुण वस्तुओं के धर्म न होकर हमारी आत्मा के संवेदन मात्र हैं। इन संवेदनों को उत्पन्न करते हैं मूल गुण। मूल गुणों के बिना उपगुण उत्पन्न नहीं हो सकते, अतः इन उपगुणों को हमारी आत्मा की कल्पना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनको उत्पन्न करने की शक्ति आत्मा में न होकर द्रव्यों के वास्तविक गुणों में है। ये उपगुण हमारी आत्मा में द्रव्यों के मूल गुणों द्वारा उत्थापित संवेदन मात्र हैं। अतः इन उपगुणों के विज्ञान द्रव्यों के वास्तविक धर्मों के प्रतिबिंब नहीं हैं। द्रव्यों का घनत्व, सॉलिडिटी, विस्तार, एक्सटेंशन, आकार या शेप, गति, मोशन, स्थिति, रेस्ट और संख्या या नंबर जो एकाधिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं, उनके मूल गुण हैं जो उन द्रव्यों में वस्तुतः विद्यमान हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जो एक इंद्रिय द्वारा प्राप्त होते हैं, उपगुण हैं। ये वस्तुतः द्रव्यों में नहीं रहते, ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। मूल गुणों की शक्ति के कारण इंद्रिय संवेदन के रूप में इनका आत्मा में जन्म होता है। घनत्व, विस्तार, आकार आदि विज्ञान द्रव्यों के वास्तविक मूल गुणों की हमारी आत्मा में प्रतिबिंब है। रूप, रस, गंध आदि विज्ञान द्रव्यों के वास्तविक गुणों के प्रतिबिंब नहीं हैं। ये वास्तविक गुणों द्वारा उत्पादित इंद्रिय संवेदन मात्र हैं। आत्मद्रव्य में मूल गुण ही होते हैं, उपगुण नहीं। स्वसंवेदन में अंतःकरण का इन मूल गुणों से साक्षात संपर्क होता है।